તારીખ 14/9/1991 શ્રી સમયસર ગાથા 181-183 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 23 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે.
वितराग भाव में अपना स्वरूप में अहम बुद्धि होती है. निज पद को छोड़ करके कहीं भी अहम बुद्धि नहीं होती है, उसी को उत्तम मार्दव कहने में आता है. अभिमान तो उसको कहने में आता है कि जो अन्य पद में अहमपणा होता है उसको ही अभिमान कहते हैं. वर्तमान पर्याय को लक्ष्य में रख करके साधक जीव को ऐसा लगता है कि मेरा स्वरूप परिपूर्ण सर्वज्ञ पद है, इसके मुकाबले में मेरी पर्याय अनंत में भाग रूप विकसित हुई है, बहुत जघन्य परिणाम है मेरे, इसलिए मुझे अवस्था दृष्टि से थोड़ा भी अभिमान मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधक की अवस्था पूर्ण अवस्था के मुकाबले में अनंत में भाग है. 12वें स्थान तक ज्ञान अनुप में भाग में किसका अभिमान करें, ज्ञान का करें, किसका करें? जब ज्ञान मद ही नहीं है तो फिर दूसरा मद तो होने का सवाल ही नहीं. मुख्यतया ये बात चारित्र की प्रधानता से मुनिराज के धर्म के विषय में चलती है. फिर भी मुमुक्षु जीव को अपनी भूमिका के अनुकूल इसका विचार कर लेना चाहिए. सनातन जैन धर्म का अनादि नियम अनुसार इस दस दिवस को दस लक्षण पर्व कहने में आता है, और वही सच्चा पर्युषण है, क्योंकि दूसरे लोग दूसरे भी मनाते हैं. अगले 8 दिनों में श्वेतांबर लोग मनाते हैं, तो सच्चा पर्युषण पर्व तो यही 10 दिन के हैं. आज उत्तम मार्ग धर्म का दिन होने से पद्मनंदी पंचमिष्ट का शास्त्र में से इसका वर्णन का वांछन होता है. उसमें वर्णन के दो श्लोक है. उत्तम मार्दव मैंने उत्तम मार्दव धर्म है, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव वगैरह 10 धर्म के साथ सम्यक दर्शन, 10 धर्म 10 प्रकार सम्यक दर्शन सहित ही होता है. बिना सम्यक दर्शन ये नहीं होता है, ऐसा लक्ष्य में रखने का है. श्लोक है 87 नंबर का श्लोक है पद्मनंदी में से. धर्मांगम एतदीय मार्दव धर्म अधेयम ज्यात्यादि वर्ग परिहरम मुशंति संतः तद्धार्यते किशुन बोध दशा समस्तम स्वप्ने दृशा जल सदृशम जगदीक्षमाण है. इसका अर्थ है कि उत्तम जाति कूल बल ज्ञान वगैरह प्रकार के अभिमान का त्याग होना, उसी को मार्दव कहते हैं. मान का त्याग होना, अभिमान का नाश होना, उसी को ही मार्दव धर्म कहने में आता है. खास करके इस मनुष्य गति में मान प्रकृति की प्रबलता रहती है। चारों गतियों का अपना अपना मुख्य कषाय है। जो चार गति में विद्यमान होते हैं उसी कारण से उस गति में आने का हुआ है। नरक गति में क्रोध कषाय की प्रबलता रहती है, देवलोक में लोभ कषाय की प्रबलता रहती है, मनुष्य में मान कषाय की रहती है और तिर्यंच में माया कषाय की प्रबलता रहती है। तो यहाँ पर मान नहीं हुए तो मोक्ष हथेली में मिलता, सिमत जी ने ये बात कही है कि अगर मान इधर नहीं होता मनुष्य को तो मोक्ष तो हथेली में मिल जाता। हथेली में कितना आसान है मोक्ष को पाने में, सबसे कोई बड़ा अवरोध है तो ये मान का है। उसमें जाति का मान होता है, कुल का होता है, शरीर बल का होता है, शरीर के रूप का होता है, धन का होता है और अपनी बुद्धि सूक्ष्म का भी होता है। यह मार्दव धर्म धर्म का अंग है। जिसने अपना सम्यक ज्ञान रूपी दृष्टि से समस्त जगत को स्वप्न तथा इंद्रजाल के समान देखा है वही उत्तम निर्विमान रूप धर्म को क्यों न धारण करें, अर्थात अवश्य धारण करते हैं। ऐसे जो लोग हैं जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान समेत हैं वो किसी भी प्रकार के सारे जगत को वो स्वप्नवत देखते हैं, जैसे स्वप्न की कोई चीज जागृत अवस्था में काम में नहीं आती, स्वप्न की सुखड़ी भूख नहीं भांगती, ऐसा ही जगत के सारा जगत अनुकूल हो जाए तो आत्मा को कुछ मिलता नहीं, सारा जगत प्रतिकूल हो जाए आत्मा में से कुछ जाता नहीं, कुछ गंवाता नहीं, कुछ खोता नहीं आता। इसलिए जगत की कोई चीज मेरे काम की नहीं है, ऐसे ज्ञानियों को जगत का मूल्य चला गया है इसलिए जगत के पदार्थ के विषय में उसको अभिमान होता नहीं है, ये कहने का अभिप्राय। तो आज के धर्म के विषय में संक्षेप में बात है। चलता अधिकार है, समय सार संवर अधिकार 182-83 का था। गाथा का अनव्यार्थ चलता था। क्या कहते हैं आचार्य महाराज, उपयोग उपयोग में है, क्रोधाधिक में कोई उपयोग नहीं। उपयोग मैंने ज्ञान का व्यापार है वो अपने आप में है, उसके बहुत समीप जो क्रोधादि रागादि विकारी परिणाम है उसमें उपयोग नहीं है। उपयोग का लक्षण जानने का है, अनुभव करने का है और रागादि का लक्षण नहीं जानने का है। उपयोग में अशांति नहीं है, ज्ञान में अशांति नहीं है, रागादिक क्रोधादिक में अशांति है, आकुलता है, ज्ञान निराकुल स्वरूप है। ऐसे दोनों का अनुभव भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है और क्रोध क्रोध में ही है, उपयोग में निश्चय से क्रोध। शब्द में उपयोग नहीं है, आगे ऐसा कहा था, इधर कहा कि उपयोग में क्रोध नहीं है। क्रोध रूप जो विभाव परिणाम है वो अपने आप में है, उस क्रोध को उस उपयोग में क्रोध के परिणाम नहीं है। उपयोग में क्रोध का परिणाम का ज्ञान हो सकता है, कितना क्रोध तेज हुआ मंद हुआ ऐसा क्रोध का जानना उपयोग में हो सकता है, क्योंकि उपयोग एक चैतन्य दर्पण जैसा है, जैसे दर्पण के सामने कोई भी पदार्थ आता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में आता है, वैसे ज्ञान दर्पण में भी जो भी भाव या पदार्थ सामने होता है समीप में होता है उसका प्रतिबिंब आता है, लेकिन उपयोग में क्रोध नहीं है। यहाँ थोड़ा भ्रांति का प्रसंग बनता है। जब उपयोग में क्रोध जानने में आता है तो ज्ञान को ज्ञान के रूप में अनुभव नहीं करने वाला जीव ऐसा मिथ्या अनुभव करता है कि क्रोध मेरे में, मैंने ज्ञान में होता है। क्या जैसे शक्कर मीठी लगती है तो शक्कर मीठी ज्ञान में, शक्कर की मिठास जानने में आती है, या शक्कर की मिठास ज्ञान में प्रवेश पाती है? लगना मैंने क्या और जानना मैंने क्या, थोड़ा इधर हम इस विषय पे ध्यान देने की हमें जरूरत है। ज्ञान में जानना क्या और लगना मैंने अनुभव होना क्या, दो अलग अलग बात है। ज्ञान के दो धर्म हैं, जानना और वेदना मैंने अनुभव करना। पर भाव और पर पदार्थ को ज्ञान जानता है, लेकिन पर भाव और पर पदार्थ को ज्ञान वेदन करता है या अनुभव करता है या भोगता है, ऐसा बन सकता नहीं। बहुत स्पष्ट शास्त्रीय भाषा में कहें तो ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, किंतु ज्ञान स्वपर वेदक नहीं है। ज्ञान सिर्फ स्वयं का वेदक है, पर का वेदक नहीं होता। समय सार की 320 नंबर की गाथा देखो आप, इसका सबूत है ये आचार्य महाराज के स्वयं के शब्द में। ये जम नेत्र तेमज ज्ञान नथी कारक नथी वेदक अरे, क्या कहा? ज्ञान नेत्र जैसा है, नेत्र जानता है, लेकिन जिसको जानता है उसमें कुछ करता नहीं है, उसको भोगता नहीं है। वैसे ज्ञान पर को जानता है लेकिन पर को करता और पर का भोगता नहीं होता है। कहां तक कि कर्मोदय निर्जरा बंद और मोक्ष चार पद ले लिया। कर्म का उदय के सामने निर्जरा को ले लिया, बंद के सामने मोक्ष को ले लिया। अपने चारों प्रकार के परिणाम को भी जानता है लेकिन वेदन नहीं करता। क्रोधादि को जानता है लेकिन क्रोधादि को वेदन नहीं करता। भिन्न रहकर जानता है, भिन्न रहने वाला क्रोधादि का वेदन नहीं कर सकता। ज्ञान को होता है ज्ञान जानता भी है और वेदन भी करता है, दो धर्म में है। ज्ञान में अनुभव करने का धर्म किसका है? ज्ञान का। जानने का धर्म किसका है? कि ज्ञान का। किसको जानता है? कि स्वभाव और पर दोनों को जानता है। किसको वेदता है? कि स्वयं को वेदता है, दूसरों को वेद सकता नहीं है। ऐसी बात है। ये प्रकरण थोड़ा स्पष्ट होना जरूरी है। खुद के मतलब ज्ञान, ज्ञान रूप है क्या? क्या क्रोध रागादि रूप होता है क्या? आचार्य देव मना करते हैं, इसका मतलब क्या? मैं नहीं मानता, वो बात है क्या? आचार्य देव तो भले ही मना करें लेकिन हम नहीं मानेंगे, ऐसा है क्या? हमारा अनुभव मिथ्या अनुभव है। क्या कहते हैं आचार्य महाराज? कि भाई तेरा अनुभव है वो मिथ्या अनुभव है। अगर तेरा अनुभव सत्य होता तो तुझे अनुभवी मैं कह देता। क्या कहता मैं? कि तुम ही अनुभवी पुरुष हो, लेकिन तुम अनुभवी पुरुष नहीं हो, तुझे मिथ्या अनुभव हो रहा है। ये बात है। आप ये प्रश्न अवश्य कर सकते हो। अब इसका स्पष्टीकरण कर दूंगा कि हमारा जो मिथ्या अनुभव है वो मिट जाए और सम्यक सच्चा ज्ञान में ज्ञान का स्वसंवेदन रूप अनुभव हमें हो, इसलिए हमें क्या करें? यही तो समस्या है ना। तो वस्तु स्थिति जब हमें श्री गुरु से समझने को मिलती है कि ज्ञान सिवा ज्ञान किसी का अनुभव नहीं कर सकता और क्रोधादिक और शक्कर आदि का अनुभव होता है ऐसा लगता है, वो भ्रांति है, भ्रम है, भूल है, गलती है, तो हम आचार्य महाराज को जब मान्य करते हैं, विशेष रूप से मान्य करते हैं, प्रमाणिक समझ करके, निर्दोष पवित्र समझ करके, तब हमें हमारी गलती की खोज करना चाहिए। ये कैसे होती है? ये गलती कैसे हुई? तो बिना सुख बुद्धि ऐसी गलती होती नहीं। अभिप्राय जब ऐसा है कि शक्कर मीठी है तो मीठी लगेगी, मीठी है उसमें सुख है ऐसा लगेगा, तब वो मीठी लगेगी। उसका मीठापन जानना एक बात है और मीठापन लगना दूसरी बात है। क्या अंतर है? मीठिया स्वाद को मीठा जानने में आवे वो कोई अपराध नहीं है, लेकिन वो मिठाई अच्छी लगे वो अपराध है, उसमें राग होता है, इसलिए ये अपराध है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि तुझे तो तेरा ज्ञान का स्वाद आता है ना भैया। आबाल गोपाल को 17-18 का था समय सार के, आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदा ही अनुभव में आ रहा है। क्या लिखा है आचार्य महाराज ने? छोटे मोटे सभी जीव को, आबाल गोपाल मतलब क्या है कि सभी जीव को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आता है। तो आप तो ना कहेंगे कि नहीं, हमको तो आत्मा नहीं अनुभव में आता है, हमको तो राग अनुभव में आता है, हमको तो मिठाई अनुभव में आती है। तो इसका यही कारण है कि राग में सुख बुद्धि है, राग की मिठास और पर पदार्थ के संयोग रूप मिठास ऐसी सुख बुद्धि से ज्ञान में ज्ञान का अनुभव है, दूसरा अनुभव नहीं है, वो बात हमारे समझ में नहीं आती, हमारे लक्ष्य में नहीं आती, हमारे अनुभव में स्पष्टतया वेदन में नहीं आती, यही कारण है। तो उसको कैसे मिटावे कि बुद्धि में ये तो बैठा नहीं कि ये मिठाई में सुख नहीं है, ये बुद्धि में बैठा है क्या कि मिठाई में सुख नहीं है, ऐसा बुद्धि में बैठा क्या? तो कहां बैठा है, मिठाई में सुख नहीं है ऐसा बुद्धि में बैठा। तो जब सुख का वेदन होता है इस वक्त बुद्धि कहां चली जाती है? अब मेरा प्रश्न है, आपके प्रश्न के सामने मेरा ये प्रश्न है कि जब आपकी बुद्धि में ये बात अच्छी तरह बैठ गई है कि मिठाई में सुख नहीं है, अब जब मिठाई आप खाते हो उदय वश, खाने का उदय चलता है, जब उसी वक्त सुख लगता है, अच्छा लगता है, उस वक्त वो बुद्धि कहाँ चलेगी जिसमें आपने निर्णय किया है कि मिठाई में सुख नहीं है? इसका जवाब मुझे चाहिए। हैं? तो ये निर्णय है, ये राग में हुआ है, ज्ञान में नहीं हुआ है, क्या बात है? अब मूल बात पर आ जाए यहां पर कि ये निर्णय राग में हुआ है, ज्ञान में नहीं हुआ है। तो ज्ञान में अगर निर्णय होता तो ज्ञान का स्वभाव जागरूक रहने का है, क्या है? इसका नाम चेतन है, जो चेतता है इसका नाम चेतन है। अगर हमने ज्ञान में निर्णय किया होता कि राग में या मिठाई में सुख नहीं है तो हम चेत जाते उस वक्त, लेकिन हम चेतते नहीं है, यही बताते हैं कि हमारा निर्णय ज्ञान में कोई और जगह राग में हो गया है, हैं? अज्ञान में कहो, राग में कहो, जहां भी कहो, ये निर्णय हमारा सही नहीं है, यथार्थ नहीं है। यथार्थ निर्णय में ऐसी जागृति आए बिना रहती नहीं, ये बात है। जी अगर आगे आगे आ जाओ, किशोर भाई, किशोर भाई आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इतनी जगह पड़ी है फिर इतनी दूर क्यों बैठते हो भैया? हाँ ये बात ठीक है, राग में निर्णय किया है, इसका मतलब ये है कि राग में तन्मय होकर के निर्णय लिया है। निर्णय तो ज्ञान ने लिया है, लेकिन राग में निर्णय लिया मतलब क्या कि राग में तन्मय होकर के निर्णय लिया है। जैसे पानी का प्याला हमें दो, तो आप तो ये कहेंगे कि पानी का प्याला कभी बन सकता है या हो सकता है क्या? का मतलब ये है कि जिसमें पानी भरा हो ऐसा प्याला मुझे चाहिए। तो भाषा में तो व्यवहार की भाषा संक्षिप्त भाषा बोलने में आती है, लेकिन ज्ञान में साफ होना चाहिए कि शब्द कुछ भी हो लेकिन क्या कहने का मतलब है। तो जो ज्ञान राग में एकत्व करके, एकत्व हो नहीं सकता है फिर भी मिथ्या भाव से, एकत्व का एहसास करता है, अनुभव करता है, तो उसका निर्णय भी राग में हुआ ऐसा कहने में आता है, क्योंकि उसको ज्ञान क्या कहे, ऐसे ज्ञान को ज्ञान क्यों कहे हम? ज्ञान होते ही वो अज्ञान है, या राग है, उसको तो ये बोला, अज्ञान में कहो या राग में कहो, बात ये चली कि अज्ञान में निर्णय हुआ है, अज्ञान में कहो राग में कहो एक ही बात है, मतलब विपरीत ज्ञान में निर्णय हुआ है, ज्ञान के विपरीतता में वो निर्णय हुआ है, अज्ञान कहो या ज्ञान की विपरीतता कहो, उसमें ऐसा निर्णय हुआ है। हाँ, सही निर्णय सम्यक दर्शन से पहले होता है और सही निर्णय सम्यक दर्शन से पहले करना पड़ता है। गलत निर्णय जो हमारा है तो निर्णय के आधार पे परिणाम चलता है, निर्णय के दौरान सब परिणाम चलेंगे, इसलिए हमारा निर्णय सही होगा तो सभी परिणाम ठीक चलेंगे, निर्णय गलत होगा तो सभी परिणाम विपरीत चलने लगेगा, जो निर्णय विपरीत है तो परिणाम भी विपरीत हो जाएगा, सब यही कारण है। हाँ, ज्ञान अवस्था में सही निर्णय, कल तो यही बात चली, कल रात को आप नहीं आए थे क्या? आए थे? नहीं आए थे। कल रात को क्या बात चली थी? कि अनुभूति के पहले 136 नंबर, कोई बात नहीं, अपन दोबारा ले ले, बैंस के वचनामृत चला था 136 नंबर के, सम्यकत्व से पूर्व भी, सम्यक्त्व से पहले भी विचार द्वारा निर्णय हो सकता है, भले अभी अनुभूति नहीं हुई हो, तथापि पहले विकल्प सहित आत्मा का पक्का निर्णय होता है। ये बेंस के वचनामृत 136। तो गुरुदेव ने ये कहा 144 गाथा के प्रवचन में ये बात, कि थोड़ा राग से हट करके वेद ज्ञान की प्रैक्टिस करके, वेद ज्ञान का विकल्प करके नहीं, परंतु वेद ज्ञान की प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस थोड़ा करने से ज्ञान के आधार से ज्ञान स्वभाव का निर्णय होना चाहिए, राग के आधार से अनादि से जो ज्ञान परिणमता है, राग के आधार से कहो, राग के एकत्व से कहो, राग में तन्मय होकर कहो, लीन होकर कहो, ऐसे भाव में जो निर्णय होता है ज्ञान में, वो गलत निर्णय रहता है, वो निर्णय सही नहीं होता है, लगता है सही तो भी इसमें भ्रांति है, भ्रम है, वो सही नहीं है, इसलिए थोड़ा वेद ज्ञान की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वेद ज्ञान विकल्प रूप विचार रूप है, वो वेद ज्ञान दरअसल में है ही नहीं, लेकिन वेद ज्ञान का जो प्रयोग होता है वही सच्चा वेद ज्ञान है, और इसकी तो ये गाथा है, हमारे स्वाध्याय में एजेंडा पर कोई विषय है तो यही है कि वेद ज्ञान का प्रयोग कैसे करना। समझ में नहीं आता है प्रश्न, मुझे कोई बात नहीं है, मुख्य गौण का सवाल है, विकल्प होवे मन होवे उसकी कोई बाधा नहीं निर्णय के काल में। आपको ये लगता है कि मन होता है विकल्प होता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं लगता कि ज्ञान भी होता है, तब मेरा प्रश्न है। जब विकल्प होता है उसकी उपस्थिति की आप मुझे नोंद करवाते हो कि विकल्प है इसकी नोंद करो, उधर विकल्प तो है क्या नहीं है, तो मैं कहता हूं कि ज्ञान भी इधर है उसकी नोंद करो वो है क्या नहीं है, जब दो है, ज्ञान भी है और राग भी है, विचार में तो दो ही है, और आप विकल्प की प्रधानता करते हो कि विकल्प है राग है मन है ये है ये है, तो हम कहते हैं कि नहीं ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान है, दो की प्रधानता हो नहीं सकेगी, जिसको राग की प्रधानता होगी वो ज्ञान को चुक जाएगा, जिसको ज्ञान की प्रधानता होगी वो राग को चुक जाएगा। होने पर भी क्या हमें अभी तक राग की प्रधानता है तो ज्ञान होने पर भी हम चुक जाते हैं, और ज्ञान की प्रधानता होगी तो राग होने पर भी राग को चुक जाएंगे। मुख्य गौण करने की परिस्थिति छद्मस्थ जीव को होती है। राग की मुख्यता करके, राग का आधार लेकर के हमारा परिभ्रमण और हमारी भ्रमणा चालू रही, हमारा मिथ्या बना रहा, मिटा नहीं। हम श्री गुरु कहते हैं कि तुम ज्ञान की प्रधानता करो, राग की गौणता कर दो, राग अपने आप अब देखिए कि प्रधानता जिसकी रुचि होती है उसकी होती है, उसकी प्रधानता रहती है। अब थोड़ा वैज्ञानिक परिस्थिति क्या है इसके साथ, परिणाम में, परिणाम का विज्ञान क्या है कि जिसकी रुचि होगी उसकी प्रधानता होगी। जैसे अपन खाना खाने को बैठते हैं तो उसमें सब्जी भी होती है, दाल भी होती है, नमकीन भी होता है, मिठाई भी होती है, रोटी भी होती है और अचार भी होता है, चटनी भी होती है, सब प्रकार के आइटम तो 5-7-10 होती है। अब हमारा पहला हाथ किस पर जाता है, किस पर हाथ पड़ता है, है? थोड़ा अपने आप को तलाश करके, जांच करके, अपने परिणाम को समझ करके बताइए कि हमारा हाथ फिर किस चीज पर जाए। दसों पर तो जाएगा नहीं, किसी एक पर जाएगा, ठीक है? तो चीज दस है तो भी हम एक को पहले पसंद करते हैं क्योंकि हमारी रुचि है। यहां तो दो ही चीज है, एक राग और एक ज्ञान। हमारी रुचि कहाँ है? जिस राग में अशांति है, आकुलता है, उस पर हमारी रुचि है, और जिस ज्ञान में आकुलता नहीं है, जो स्वभाव से, स्वरूप से ही शांत है, इस पर हमारी रुचि नहीं है, इसलिए मुख्यता नहीं है, और फिर हम दुखी हो रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमको दुख होता है, हमारा दुख मिटे तो अच्छा, कैसे बनेगा? ही विवेक करना है। वेद ज्ञान को विवेक भी कहते हैं कि अगर जिसको सुखी होना हो और दुखी नहीं होना हो, उसको जहां दुख है यहां दुख भाव की रुचि नहीं होनी चाहिए, राग की रुचि नहीं होनी चाहिए। राग की रुचि, मैंने पुण्य राग की भी रुचि नहीं होनी चाहिए। ये गुरुदेव का प्रवचनों का मुख्य ध्वनि है। गुरुदेव के प्रवचनों आप देखें, कोई भी शास्त्र और कोई भी विषय चलता हो, गुरुदेव ये बात तो कहेंगे कहेंगे और कहेंगे कि पुण्य की रुचि छोड़ो, राग की रुचि छोड़ो। ये बात तो आएगी आएगी और आएगी, है? रुचि है, उसकी मुख्यता है तो उसका पक्ष करेंगे ही करेंगे, इसकी मुख्यता है उसका ही पक्ष करेंगे। राग का पक्ष करते हैं तो मतलब व्यवहार का पक्ष हो गया वो, तो इसमें तो कोई छूटने का समय अवसर आएगा नहीं। क्या विषय चलता है देखो अपने शास्त्र के अनुसार कि क्रोध क्रोध में है, उपयोग में क्रोध नहीं है। उपयोग में क्रोध जानने में आता है, वेदने में नहीं आता है। तो जानने में आता है वो भिन्न है, उसको भिन्न होकर जानने में आता है, या उस वो अभिन्न है ऐसे जानने में आता है। तो ये अभ्यास करो, ये प्रयोग करो भीतर में। ये प्रयोग करना चाहिए कि हमारा विभाव परिणाम मेरे ज्ञान से भिन्न है। सपर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव में क्रोधादि विभाव दिखता है, जानने में आता है, परंतु वो भिन्न है, वो भिन्न रूप में जानने में आना चाहिए। भिन्न है वो अभिन्न रूप में नहीं जानने में आना चाहिए। इसके लिए बेंसरी के वचनामृत में एक बहुत सुंदर बात आई है। वचनामृत में भूल है, वचनामृत नंबर 197 आखिर का पैराग्राफ, और आखिर की पंक्ति, आखिर का वचन, ऐसा नहीं होता कि, ऐसा नहीं होता कि पर में तीव्र रुचि हो और उपयोग अंतर में प्रगना छेने का कार्य करें। इसका मतलब क्या हुआ कि पर में तीव्र रुचि हो, सुख बुद्धि हो और भेद ज्ञान का प्रयोग कर सके, ऐसा नहीं बनेगा। देखिए, विचार की भूमिका में पर में तीव्र रुचि होती है तो विचार हो सकता है, लेकिन प्रयोग नहीं हो सकता। प्रयोग तो तब ही होता है कि जब हमारी रुचि और सुख बुद्धि राग में और पर में मंद हो जाए, इसका अनुभव अनुभाग कट जावे, तब तीव्र मैंने इसका अनुभाग, रस तीव्र नहीं होना। जिसको राग में और पर पदार्थ में तीव्र रस है, ऐसी सुख बुद्धि है तीव्र रस समेत, उसको भेद ज्ञान का प्रयोग नहीं हो सकता। विचार हो सकता है लेकिन प्रयोग नहीं हो सकता। वो विचार राग की प्रधानता में हो जाएगा, ज्ञान की प्रधानता में नहीं होगा, तो बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझा नहीं समझा बराबर है। इसलिए जब भी पर पदार्थ में मिठाई खाते वक्त सुख लगेगा तो ज्ञान की जागृति उसमें नहीं आएगी। जो बात समझ में आई वो कहीं पड़ी रहेगी और इधर सुख का वेदन कर लेगा, क्रांति से है आकुलता का, लेकिन मानेगा कि मुझे सुख हुआ है। इसलिए यही बात होती है, पाठी मैंने उठन कर दिया, पाठी मैंने पठन कर दिया लेकिन अनुभव नहीं किया। पर पठन से अनुभव नहीं होता, कलष्टिका है ना, तीस नंबर का कलश है समय सार का। राजमल जी क्या लिखते हैं देखिए। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई जानेगा कि जैन सिद्धांत का बार बार अभ्यास करने से दृढ़ प्रतीति होती है, उसका नाम अनुभव है, ऐसा नहीं है। क्या कहते हैं, जैन सिद्धांत का बार बार अनुभव करने से दृढ़ता, बार बार अभ्यास करने से दृढ़ता होती है, उसी का नाम अनुभव ज्ञान नहीं है। तो वो कैसे होता है कि मिथ्यात्व कर्म का रसपाक मिटने पर, दर्शन मोह का अनुभाग घट जाने पर, दर्शन मोह मंद होने पर मिथ्यात्व भाव रूप परिणमन मिट सकता है और तब वस्तु स्वरूप का प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद आता है, अतिन्द्रिय प्रत्यक्ष, उसका नाम अनुभव है। क्या बात कहा, जैन सिद्धांत का बार बार अभ्यास करना वो ज्ञानाभ्यास है कि नहीं है? है, ये बात देखनी है कि ये ज्ञानाभ्यास है या रागाभ्यास है, क्या है वो, ये बात का है पता होना चाहिए। हम सिद्धांत का अभ्यास करते हैं, इस वक्त ज्ञानाभ्यास होता है या रागाभ्यास होता है? राग की मुख्यता में राग का अभ्यास चलेगा, ज्ञान की मुख्यता में ज्ञान का अभ्यास चलेगा। यही बात समझाने का इधर आचार्य भगवान का अभिप्राय है कि क्रोध क्रोध में है, उपयोग में वास्तव में निश्चय से क्रोध नहीं है। आठ प्रकार के कर्म, अब दूसरी बात लेते हैं कि आठ प्रकार के कर्म ज्ञानावरणी दर्शनावरणी से लेकर के और नौ कर्म शरीर आदि संयोग, उसमें उपयोग नहीं है। क्रोध में तो उपयोग नहीं, मैंने भाव कर्म में तो उपयोग नहीं, लेकिन द्रव कर्म में और नौ कर्म में भी ज्ञान नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है। क्या अपना अभ्यास ऐसे करते हैं कि क्रोध में ज्ञान नहीं है तो हम थोड़ा विचार करते हैं सम्मत करने के पहले कि ठीक है क्रोध है वो जानता नहीं है, लेकिन मेरा ज्ञान क्रोध में नहीं है, और कर्म में ज्ञान नहीं है लेकिन मेरा ज्ञान कर्म में नहीं है। जाते हैं ना अपने लोग भी जाते हैं मुमुक्षु लोग ज्योतिषियों के पास, कोई तकलीफ हो जाती है, बीमारी हो जाती है या कुछ निर्धनता हो जाती है या कोई ऐसे टेंशन का प्रसंग हो जाता है तो फिर लगता है कि कैसे पाप का उदय है, ऐसा लगता है तो पाप का उदय कहां तक चलेगा। जाते हैं ज्योतिष के पास, भैया ये हमारे नसीब में कहां तक है, नसीब तो दिखाओ, नसीब देखने के लिए जाते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि तेरा ज्ञान इसमें नहीं है, तेरा अस्तित्व नहीं है, ज्ञान मैंने तेरा अस्तित्व नहीं है, तू इसमें कर्म में है ही नहीं, उदय तेरा नहीं। क्या कहते हैं, उदय किसका है फिर? उदय कर्म का, उदय कर्म में है, आत्मा में कर्म का उदय कभी आता? इसका मतलब ज्योतिष के पास कभी नहीं जाना चाहिए। इसमें थोड़ा गहराई से विचार करने का है कि हमें ऐसा लगता है कि ये उदय पाप का जल्दी पूरा हो जाए तो अच्छा, इसमें क्या भावना है, है? क्या भावना है, पाप का उदय जल्दी पूरा हो जाए तो अच्छा है, मैंने प्रतिकूलता दुख रूप है, अनुकूलता सुख रूप है, ऐसा जो दर्शन मोह है उसको दृढ़ करने को जाता है। जो ज्योतिष के पास जाता है वो अपना दर्शन मोह को तीव्र करने के लिए जाता है, आत्मा के लिए नुकसान है। श्रीमद् राजचंद्र जी को ज्योतिष का ज्ञान हो गया था, क्या हुआ कि जब 18 साल की उम्र में बंबई में उन्होंने कोई नगरपति वगैरह तो यूरोपियन लोग जज में जज लोग वगैरह थे, उसमें बड़ी सभा में सतावधान किए तो सारे समाज बहुत प्रभावित हो गई, बंबई समाचार, बॉम्बे क्रॉनिकल आदि सब पेपरों में उनका बहुत प्रसिद्ध हो गई। तो उसमें ज्योतिष लोग कुछ थे उनकी सभा में, तो उसमें जो बड़े बड़े 10 ज्योतिष थे उन्होंने इसका ज्योतिष का सब कुंडली कुंडली बना करके अस्त्र रेखा देख करके फिर ये देखा को हो ये तो कोई महान जबरदस्त पुरुष है। वो तो लिखते हैं अपने पत्र में, अपने बेनोई को लिखते हैं एक पत्र लिखा है जेठा भाई को, नहीं वो चतुर्भुज बैचर को लिखा। तो भाई मेरे 10 बड़े ज्योतिष विद्वानों ने मेरे ग्रह देखे हैं पर उन्होंने ये एकमत हुए हैं, सब एकमत हुए 10-10 कि ये परमेश्वर आदमी है। क्या है? परमेश्वर ग्रह वाला आदमी है। जो परमेश्वर होते हैं इनके जो ग्रह होते हैं ऐसे इनके ग्रह हैं। पर मुझे भी कुछ अद्भुतता भाषित हो रही है इन दिनों में, मुझे भी कोई अद्भुतता भाषित हो रही है ऐसा करके लिखा। फिर उन्होंने उन लोगों को पूछा कि आप लोग कैसे ये गिनती करते हो? तो उन लोगों ने बताया कि देखिए भाई ये हमारा जो ज्योतिष का जो विद्या है वो विद्या की गिनती करने की ऐसी पद्धति है। ये उनका तो दिमाग बहुत तेज था, बहुत बुद्धि थी, तो बाद बाद में ज्योतिष विद्या सीख ली उन्होंने, बात करते करते सीख ली। तो फिर उन्होंने ट्राई भी किया कुछ लोगों में, किसी का देख लिया और बोला कि तुमको ऐसा होना चाहिए, तुमको सही निकला। तो 2-5 जगह सही निकला तो लोगों को पता चल गया कि इनको ज्योतिष का ज्ञान बहुत अच्छा है, तो लोग आने लगे इनके पास। दर्दी तो बहुत है जगत में, सभी दर्दी ही समझो, डॉक्टर के पास जाते ही रहते हैं। दर्दी का तोड़ा नहीं है, डॉक्टर की अछत है। तो ये सब मानसिक दर्द है, तो ये सब मानसिक दर्द है। लोग इनके पास आने लगे, उन्होंने बंद कर दिया। ज्योतिष की बात लेकर के मेरे पास नहीं आना, मैं जवाब नहीं दूंगा, जानता हूं फिर भी मैं जवाब बंद कर दिया। क्यों? कि जो लोग आते हैं उनको दर्शनों की पुष्टि हो जाती है, इसलिए मुमुक्षु जीव को जिसको दर्शन मिटाना हो, मैंने दर्शन मोह मिटाना हो और सम्यक दर्शन करना हो उसको कभी ज्योतिष के पास जाना नहीं। क्यों पढ़ना, क्या जरूरत है पढ़ना भी? क्यों? ज्योतिष के ग्रंथ के पास गए, आदमी के पास नहीं गए, वो का वो हो गया। है ये बात ही निकाल देना दिमाग, वहां चौकड़ी लगा देना, जैसे दारू पीना नहीं लेकिन सूंघना तो खरा नहीं है? हमने कहां पिया है? हमने तो वास लिया है, तो क्या जरूरत थी तुझे? वास लेने की जरूरत क्या थी तुझे? तो तुमको कुछ उसमें मोह रहा है, मोह बात है, इस पर इस चीज पर तुझे मोह हुआ है, इसलिए अभी तेरा पल्ला छूटता नहीं है वहां से, ऐसी बात है। हमारे काम की चीज नुकसान की चीज है, जहर है। क्या है? दर्शन मोह के निमित्त जो भी है, जहां भी दर्शन मोह से फंसना होता है, हमारे आत्मा सम्यक दर्शन में आनंद अमृत को पीता है, तो अमृत के विरुद्ध ये जहर है, अमृत को मार कर वाला। तो जहर की जहरीली हवा भी अच्छी ऐसी चीज है, ये तो काफी जहर है। दर्शन हो
अनंत जन्म मरण का कारण काफी जहर है। तो जहां जहां भी जितना जितना दर्शन भोग का कारण है इसकी अपने
ये प्रयोजन सिद्धि वाला
कि कहां दर्शन भोग आ जाता है
कैसे आ जाता है सावधान रह जाना चाहिए। मैं सब पॉइंट लिया है इसका
तो उसको तीव्र नहीं हुए तो मंद कैसे हुए वो बात उसके साथ अभाव कैसे वो बात
के साथ में तो बस यहां से हमको जागृति आ जानी चाहिए हमको चेत जाना चाहिए दर्शन हो बढ़ता है ये जहर हमको नहीं खाना तो ऐसे
इस तरह से आचार्य महाराज ज्ञान का प्रयोग कराते हैं कि कर्मों में
का विचार मत करिए तो
भविष्य में क्या होगा कल क्या होगा बुढ़ापा आएगा तो इसमें क्या होगा इसका विचार कभी मत करना ये कर्म आत्मा में से आया नसीब को आत्मा में जो
आत्मा में है
कल जो होगा तो होगा आज हमको हमारा कर्म
कल जो भी होगा सब पर में होगा हमारे में कुछ होने वाला ज्ञानी कभी कल की चिंता नहीं करते और कल की जिसको चिंता है कल की क्या एक घंटा पीछे की जिसको चिंता है वो ज्ञानी हो सकते हैं नहीं ये बात है। ये मेरा पहलू है ज्ञानी अज्ञानी का समझने लायक बात है। निरंतर बनी रहती है तो ज्ञानी से ज्ञानी होने के प्रयत्न में सफलता
नहीं मिलेगी। ज्ञानी होना है कि नहीं होना है
क्यों स्वाध्याय करते हैं विद्वान बनने के लिए या ज्ञानी होने के लिए ज्ञानी बनने की चिंता अच्छी है। अगर ज्ञानी बनने की चिंता है तो वो चिंता परसों निकाला था रात को नींद नहीं आवे कैसी चिंता हुए ज्ञानी होने के लिए नींद नहीं आनी चाहिए इतनी तीव्र चिंता होनी चाहिए ये चिंता अच्छी है इनका आदर करते मुमुक्षु को होनी चाहिए उसको दर्शन परीक्षा कहते हैं ज्ञान परीक्षा कहते हैं। ताप लगेगी तो बरसात आएगी ऐसी बात तो कर्म में भी उपयोग नहीं है नो कर्म में भी नहीं है ऐसा विपरीत ज्ञान जब ही जीव को होता है तब ही वह उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा उपयोग सिवा अन्य किसी भी भाव को नहीं करता। बहुत इसमें गंभीर विषय है आज का समय हो चुका है कल भी जरा विस्तार से